सबने सुना है शायद बचपन से भी कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाम का एक बहुत ही जहरीले सांप का दमन किया था और वो लीला यहीं पर वृंदावन में हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि ये कालिया नाम का सांप जो है यमुना के नदी में जन्म रहता है। कालिया ह्रद जो कि छोटा सा सरोवर था यमुना से जुड़ा हुआ, और अपने साथियों के साथ रहकर उसने सारे स्थान को प्रदूषित कर दिया है और प्रदूषण विष का इतना था कि न केवल पानी के अंदर जो मछलियां थी वो मर गईं, परंतु तट के ऊपर जो घास था, जो पेड़ पौधे थे वो भी मर गए। यहाँ तक कि जो उस काले ग्रह के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी हुआ करते थे, उस जहर के प्रभाव से तुरंत पानी में गिर पड़ते और मर जाते। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि मैं यहाँ ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का दमन करने के लिए आया हूँ, ये मेरे अवतार का कारण है, और ये खास करके मेरे ही धाम में, मेरे घर में, वृंदावन में आकर उत्पात मचा रहा है, तो इसके बारे में अवश्य मुझे कुछ करना होगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु बहुत कम थी और श्री कृष्ण यहाँ पर आए यमुना के तट पर। जो घाट है वहाँ आपने देखा होगा, घाट है, सीढ़ियाँ हैं और वृक्ष है कदम्ब का। तो ये कदम्ब वृक्ष उस समय यमुना के तट पर था, तो आप देख सकते हैं कि 5000 वर्ष में यमुना के पथ में कितना परिवर्तन हो गया है। तो पहले यमुना यहाँ पर था और अब देखिए कहाँ है। तो ऐसे यमुना जी का मार्ग बदलते रहता है, तो उस समय वहां पर हुआ करता था। तो श्री कृष्ण उस कर्म वृक्ष के ऊपर चढ़े और जैसे मल योद्धा होते हैं कुश्ती करने वाले, वो अपने भुजाओं को थपथपाते हैं दिखाने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और मुझ में कितना साहस है और मैं डरा नहीं हूँ, और सामने वाले को थोड़ा डराने के लिए, उसके हौसले को हड़बड़ाने के लिए ऐसा करते हैं। तो श्री कृष्ण हालांकि नाजुक कोमल बालक थे, लेकिन वो चढ़े उस कदम्ब वृक्ष के ऊपर और ऐसे मल्लयोद्धा की तरह कार्य करके वो कूद पड़े जमुना के जल में, और इतने जोर से कूद पड़े कि एक भीषण आवाज आया वहां, और उस ध्वनि के कारण कालिया जो पानी के नीचे था बिल्कुल, वो सोच में पड़ गया कि ये कौन आया है मेरे घर में। और श्री कृष्ण केवल कूद के रुके नहीं, वहां अपने नाजुक भुजाओं से पानी ने पानी को बहुत छेड़ने, पानी को मारने लगे जोर से। दिखने में तो श्री कृष्ण केवल कोमल बच्चे थे, लेकिन श्रीमद् भागवत से और अन्य ग्रंथों से हमें पता चलता है कि भगवान हर अवस्था में भगवान रहते हैं। मनुष्य के लिए ऐसे नहीं होता। जब मनुष्य बाल्यावस्था में होता है तो उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि बहुत कम होती है। धीरे धीरे बुद्धि और शक्ति का विकास होते रहता है, वृद्धि होती है, और फिर जब व्यक्ति सही उम्र का आ जाता है तब उसकी शक्ति बुद्धि अच्छी खासी रहती है, और फिर बुढ़ापे में फिर क्षीण हो जाती है। लेकिन भगवान के साथ हाला वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह बाल्यावस्था से पौगंड, पौगंड से किशोर इत्यादि में जा रहे हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनकी शक्ति बुद्धि योग्यता क्षीण नहीं होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, हमने उस स्थान को आज देखा सुबह गोकुल में, तो भगवान की आयु क्या थी? एक महीना के, एक महीने के थे वो। एक महीने के आयु में उन्होंने ऐसे भीषण राक्षसी का वध किया, इतनी शक्ति थी उन्हें। तो भगवान श्री कृष्ण की आयु एक महीना है, छह महीना है, पांच साल, दस साल, सौ साल, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो भगवान ही रहते हैं हर अवस्था में, और उनका ये बाल्य अवस्था पौगंड अवस्था स्वीकार करना ये मात्र उनकी एक लीला है। तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण एक नाजुक कमजोर पांच छह साल के बालक के समान प्रतीत हो रहे थे, परंतु उनकी शक्ति तो उतनी ही थी, अनंत शक्ति। और जब उन्होंने उत्पात करना शुरू कर दिया यमुना जी के जल में, तो उस समय कालिया बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि किसकी ये और किसकी ये नजराज है कि यहाँ मेरे घर में आके इस प्रकार का उत्पात करे। और लगातार जब श्री कृष्ण ऐसे करते रहे तो कालिया को सहन नहीं हुआ, और कालिया तुरंत ऊपर आया और ऊपर आके देखा बहुत ही सुंदर बच्चा है, इतना आकर्षण कि कालिया वहीं पर खड़ा रह गया, देखते रह गया कालिया। लेकिन फिर भी कालिया आके सांप था, और सांप का स्वभाव होता है कि वो बहुत ही द्वेषी होता है, ईर्ष्यालु होता है। सांप एक प्रकार का पशु है जो बिना वजह के डस देता है। तो काली ने जब देखा कि ये सुंदर बालक है, हालांकि ये सुंदर है फिर भी इसने बहुत उत्पात किया है, अतिक्रमण किया है, इसने आतताई है, ये मेरे घर में आके इसने उत्पात किया, तो इसको दंड देना चाहिए। तो काली ने बड़ी मजबूती से श्री कृष्ण को पकड़ लिया। श्री कृष्ण पकड़े गए अपनी स्वेच्छा से, ऐसा तो कृष्ण को कौन पकड़ सकता है, क्योंकि कृष्ण लीला करना चाहते थे। तो श्री कृष्ण पकड़े गए स्वेच्छा से, और फिर काली ने सोचा कि चलो अब उसको दंड अच्छा खासा देंगे। और उस समय श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य अपने अद्भुत शक्ति का लेश मात्र प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने ऐसे बाहर शक्ति लगाई कि कालिया के शरीर में इतना दर्द होने लगा कि कालिया को कृष्ण को छोड़ना ही पड़ा, जबरदस्ती छोड़ना पड़ा। और फिर जब कालिया श्री कृष्ण को दसने का प्रयास कर रहे थे तो श्री कृष्ण जोर जोर से उठकर कालिया के फनों के ऊपर चढ़ गए और फनों के ऊपर चढ़ के बहुत ही नाजुक और सुंदर नृत्य करने लगे। और जैसे ही कालिया जिसके कई फण थे एक फण से वो डसने का प्रयास करता कालिया तो कृष्ण दूसरे फण पे चले जाते और उस फण को ऐसे हल्के कदम से नृत्य करते और जो कालिया को वो लगता कि मानो ये वज्र लग गया है। और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने एक ऐसा अद्भुत नृत्य किया जो न भूतो न भविष्य की, न ऐसा नृत्य कोई कर पाएगा न किसी ने आज तक किया है। अभी नृत्य करने के लिए व्यक्ति को मंच चाहिए, स्टेज प्लेटफॉर्म चाहिए, लोग भरतनाट्यम वगैरह सब करते हैं तो उनको अच्छा मंच चाहिए। अब काले के फनों में कौन नृत्य कर सकता है, केवल ये बहुत ही जल्दी हिलने वाला मंच है, एक नहीं सौ नहीं हजार फन और साथ साथ जहरीला सांप, उसकी जहर जो है इतनी जबरदस्त थी। फिर भी कृष्ण भगवान को कोई परवाह नहीं थी, कृष्ण भगवान एक सुंदर नृत्य करते रहे और आखिर में कृष्ण भगवान के चरण कमलों के सहार से काले की शक्ति क्षीण होती गई और अंततः कालिया जो है वो मृत्यु के दरवाजे से खड़ा था। और उस समय काले की जो पत्नियां हैं नाग पत्नियां वो आईं और वो प्रार्थना करने लगी श्री कृष्ण से कि हमें आप विधवा नहीं बनाइए, हम नहीं जानते हैं कि हमारे पति ने पूर्व जन्मों में क्या पुण्य किए होंगे, क्या तपस्या की होगी कि उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके चरण कमलों की धूली उसके सर पे रही, आपने साक्षात अपने चरण कमलों का स्पर्श उसके सर पे कराया। तो फिर श्री कृष्ण नाग पत्नी जो कि उनके भक्त थे उनके ऊपर कृपा करके काली को छोड़ दिया और काली से कहा कि अब जाओ तुम समुद्र में जाना, बहुत दूर रमणक द्वीप में जाना और वहां से कभी लौट के आना नहीं, मेरे वृंदावन के निवासियों को कभी भी परेशान नहीं करना। तो कालिया वहां से निकल गया, लेकिन जाने से पहले कालिया की पत्नियों ने बहुत सारे भेंट उपहार वगैरह दिए कृष्ण को, उनमें से एक भेंट था कौस्तुभ मणि। उसके बाद श्री कृष्ण कौस्तुभ मणि को धारण करने लगे। तो ये कालिया दमन की लीला। उसके बाद उन्होंने सारे यमुना के जल को पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया। तो जिस वृक्ष से श्री कृष्ण ने छलांग लगाई थी यमुना के जल में वो कदम्ब वृक्ष आज ही है वहां। तो कालिया घाट में जो आपने कदम्ब वृक्ष देखा तो वो वही वृक्ष है, इसलिए बहुत पावन है, बहुत ही पवित्र है और उसको नमस्कार करके हम कृपा याचना कर सकते हैं कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श आपके हुए हैं, ये कृपा हमारे ऊपर कीजिए कि हमारा भी ऐसा सौभाग्य हो। और उसके पास में एक मंदिर है कालिया मर्दन मंदिर। ऐसे बताया जाता है कि जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे वज्रनाभ, उन्होंने इनकी स्थापना की। कृष्ण के कई पुत्रों में से प्रमुख थे प्रद्युम्न के प्रमुख पुत्र थे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के प्रमुख पुत्र थे वज्रनाभ। वज्रनाभ है जिन्होंने ब्रज की ब्रजभूमि में कई मूर्तियों की स्थापना की, कई मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन उसके हुए ही 5000 वर्ष पूर्ण हो गए। और कालिया घाट के पास में ही प्रबोधानंद सरस्वती इनकी समाधि भी है। आप वहां गए थे? आप गए थे ना? तो प्रबोधानंद सरस्वती एक गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा थे। ये चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो वो श्रीरंगम में वेंकट भट्ट नाम के एक श्री वैष्णव पुजारी के घर में रहते थे और वेंकट भट्ट के दो भाई थे, उनमें से एक थे गोपाल गुरु जो बाद में चल के प्रबोधानंद सरस्वती हुए और वेंकट भट्ट के लड़के का नाम था गोपाल जो आगे चल के गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए, श्री गोस्वामी में से एक। प्रबोधानंद सरस्वती आगे चल के गोपाल के गुरु हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के। प्रबोधानंद सरस्वती थोड़े समय के बाद वृंदावन आए और उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया, वृंदावन कभी भी नहीं छोड़ने का व्रत लिया और अपने अंतिम क्षण तक वो ब्रज में ही रहे। वृंदावन से प्रबोधानंद सरस्वती का बहुत लगाव था और इसीलिए उन्होंने एक सुंदर ग्रंथ लिखा है वृंदावन महिमामृत, जिसमें उन्हें वृंदावन धाम की स्तुति की है। और चलते चलते फिर आप सीधे यहाँ पर आए हैं और ये है पुराना राधा मदन मोहन मंदिर। लेकिन जब आप ऊपर आए आपने अवश्य दूरी में देखा होगा यमुना जी बह रही हैं, दूरी में आप सबने दर्शन किया यमुना जी का, यहाँ सुबह में भी ब्रह्मांड घाट में हमने दर्शन किया। तो यहाँ इस स्थान पर जहाँ आप सीढ़ियों से ऊपर आए यहाँ और बाएं तरफ जो एक मंच है, इस मंच के ऊपर से ही आप अच्छा दर्शन कर सकते हैं और इस सारे जो पहाड़ को पर्वत को द्वादशादित्य टीला कहते हैं और विशेष करके उस स्थान पर जहाँ वो मंच है, ऐसे कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने कार्य का दमन किया तो उसके बाद वो काफी समय तक पानी में रहने की वजह से काफी उनका शरीर ठंडा पड़ गया था तो वो यहाँ पर आए और उस समय 12 जो आदित्य हैं, जो सूर्य हैं, द्वादश द्वादश मतलब 12, आदित्य मतलब सूर्य, तो वो यहाँ पर आए कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण को थोड़ी गर्मी पहुंचाने के लिए ताकि उनको सर्दी न पड़े। और यहाँ पर श्री कृष्ण लेटे रहे, आराम विश्राम करते रहे और द्वादश आदित्य ने आकर सारे पानी जो है सुखा दिया। लेकिन इतनी गर्मी हुई कि श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से दिव्य पसीना बहुत आने लगा और इसलिए इस पसीने से एक सरोवर बना। वो सरोवर आज नहीं है और उस सरोवर के तट पे घाट भी हुआ करता था, प्रशांगन घाट, प्रशांगन मतलब पसीना, लेकिन वो घाट और वो सरोवर आज प्रकट नहीं है। तो ये है वही द्वादश आदित्य किला और इसी किला के ऊपर सनातन गोस्वामी निवास किया करते थे। सनातन गोस्वामी ने इस मंदिर की स्थापना की, मदन मोहन मंदिर। वैसे हालांकि ब्रजनाथ ने इतने सारे मूर्तियों की स्थापना की थी ब्रजभूमि में, फिर भी कई सालों बाद सब कुछ लुप्त हो गया और जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए तो प्राय ऐसे कोई तीर्थ स्थान नहीं थे जो कि प्रकट थे, सब अप्रकट हो गए थे। किसी को पता नहीं था कि भगवान कृष्ण की लीला स्थलियां कहाँ कहाँ थी। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आके उनको प्रकट कराया। उदाहरणार्थ जब वो राधा कुंड गए तो वहाँ किसी को पता नहीं था कि ये राधा कुंड है और श्याम कुंड है और उनका महत्व क्या है। उस गांव को केवल अरिट ग्राम कहा करते थे क्योंकि वो अरिशासुर का वध कृष्ण भगवान ने वहां किया था। लेकिन जैसे मैं महाप्रभु ने जाकर देखा कि यहाँ तो केवल चावल के खेत हैं और थोड़ा जल यहाँ पे है और चैतन्य महाप्रभु ने सब सारे दुनिया के लिए प्रकट कराया कि ये वही राधा कुंड श्याम कुंड है जो कि सारे ब्रह्मांड में सबसे पावन स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु तो ज्यादा समय के लिए यहाँ पर नहीं रहे वृंदावन में, थोड़े दिनों की यात्रा करने के पश्चात वापस चले गए जगन्नाथपुरी, बनारस प्रयाग इत्यादि होते हुए। लेकिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अर्थात शर गोस्वामियों को आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए, वृंदावन जाकर भगवान कृष्ण ने किए हुए लीलाओं के जो स्थान है उनको पुनः प्रकट कराइए। आप कृष्ण भक्ति के लिए प्रचार के लिए सारे शास्त्रों का सार जो है उसको निकाल कर आप ग्रंथ लिखिए, जिससे कि लोग कृष्ण भक्ति के मार्ग में लग सकें और सबको पता चले कि भक्ति के सिद्धांत क्या हैं। आप ये भी सारे समाज के सामने रखिए कि वैष्णव के आचरण कैसे होते हैं। साथ साथ आप मंदिरों का निर्माण कीजिए और अच्छे विधि की सेवा की स्थापना वृंदावन में कीजिए, और इसके लिए जो विधि विधान है उनके बारे में भी शास्त्रों से ज्ञान निकालकर आप ग्रंथ लिखिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। ऐसे अनेक आदेश देकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा। अन्य गोस्वामी जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो बाद में आए। रूप और सनातन गोस्वामी के पहले ही दो और वरिष्ठ वैष्णव आ चुके थे चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, और वो थे लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। परंतु रूप और सनातन गोस्वामी के आने के बाद में ही यहाँ पर गौरी वैष्णव भक्ति की पद्धति की स्थापना हुई। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब रूप और सनातन गोस्वामी यहाँ पर आए हो तो वृंदावन में कोई भी मंदिर नहीं था, प्राय एक भी मंदिर नहीं था, और रूप सनातन गोस्वामी की ये अनमोल भेंट है वृंदावन। आज हम अगर यहाँ बैठे हैं और सारी दुनिया अगर आज वृंदावन आ रही है तो सबको धन्यवाद देना चाहिए, विशेष करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, क्योंकि वृंदावन इन दो गोस्वामियों से विशेष करके जो भेंट है सारी दुनिया को, बल्कि इन शर गोस्वामियों ने ही वृंदावन शहर की स्थापना की या नगर की स्थापना की। उसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, केवल जंगल था यहाँ पर, और यहाँ भी केवल एक पहाड़ था द्वादश आदित्य किया, और यहाँ भी वृक्ष इत्यादि थे और कुछ नहीं था यहाँ पर। लेकिन ये सारे गोस्वामी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर बहुत तपस्या की, अपनी भजन की, अपने भजन किया, ग्रंथ लिखे और आपस में मिलजुल कर, क्योंकि वो सभी विद्वान थे, शास्त्रों के आधार पर चर्चा करते थे, गोष्ठी करते थे, और इस प्रकार से वो कई ग्रंथ लिख पाए और कई मंदिरों की स्थापना भी उन्होंने की। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये दो चीजें विशेष करके गोस्वामियों का योगदान है सारे मनुष्य समाज के लिए, एक है मंदिरों का निर्माण करना और दूसरा है ग्रंथों को लिखना। प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों चीजें प्रचार के आंदोलन के लिए अति आवश्यक है और दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तो ऐसे वृंदावन में आज के समय 5000 से अधिक मंदिर हैं, परंतु गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सबसे प्रमुख 7 मंदिर हैं। वैसे इन 5000 मंदिरों में से भी 90% जो मंदिर हैं वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं, और इनमें से भी 7 मंदिर प्रमुख माने जाते हैं जो किशोर गोस्वामियों ने और अन्य ज्योतिन गोस्वामी ने स्थापित किए थे। इनको सप्त देवालय ही कहते हैं यहाँ वृंदावन में। तो ये है राधा मदन मोहन मंदिर जहाँ पे हम बैठे हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पर है, यहाँ से सारे वृंदावन का दर्शन होता है, प्राय जमुना जी का दर्शन भी होता है। इसकी स्थापना सनातन गोस्वामी ने की। ये सबसे पहला मंदिर था वृंदावन में, सबसे पुराना मंदिर। रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद मंदिर, गोविंद देव मंदिर की स्थापना की। जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमण मंदिर की स्थापना की। श्यामानंद पंडित ने श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर मंदिर की स्थापना की। लोकनाथ गोस्वामी ने राधा गोकुलानंद मंदिर की स्थापना की और मधु पंडित गोस्वामी ने राधा गोपीनाथ मंदिर की स्थापना की। तो इन ये मंदिर जो है सबसे प्रमुख माने जाते हैं। और एक मंदिर है बांकी बिहारी मंदिर, जिनमें बड़ी संख्या में भक्त और यात्री बन जाते हैं। तो उसकी जो विग्रह है, बांकी बिहारी के विग्रह है, उनको प्राप्त किया था हरिदास नाम के एक संत ने, जो तानसेन के गुरु थे। तानसेन तो उसका नाम सुना होगा आपने, अकबर के दरबार में बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीत में बहुत ही निपुण थे, तो उनके गुरु थे वो, और उस समय यहाँ रहा करते थे। तो वो विग्रह उनको मिली थी, परंतु बांकी बिहारी मंदिर की स्थापना होकर केवल 150 साल हो गए, परंतु ये सप्त देवालय जो है ये तो करीब करीब 500 साल से है। लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि ये इतने भव्य थे, इतने सुंदर थे, तो जो मुगल राजा थे, विशेष करके औरंगजेब, उनको बहुत क्रोध आया, बहुत ईर्ष्या हुई, इसलिए उन्होंने आके यहाँ तहस नहस कर दिया। विशेष करके राजा गोविंद मंदिर 7 मंजिल का मंदिर था, और जब राजा औरंगजेब आगरा में थे, अपने कमरे से बाहर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या है, दूरी में दिखाई पड़ रहा है, कि किसी ने कहा कि ये वृंदावन का गोविंद देव मंदिर है। तो औरंगजेब को गुस्सा आया कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा और मंदिर के सारे ऊपर के जो मार्ग, जो मंदिर है, उनको तोड़ दिया। तो ऐसे बार बार जब आक्रमण होता रहा ऐसे यवनों का, तो यहाँ के वृंदावन के पुजारियों ने यहाँ के मूल विग्रहों को वो राजपूत राजाओं के संरक्षण में जयपुर आदि स्थानों में वो ले गए। इसलिए आज प्राय यहाँ कोई मूल मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। जहाँ तक मुझे मालूम है, सारे ब्रज में केवल एक मूर्ति है, जो मूल मूर्ति है, जो बद्रीनाथ ने स्थापित की थी, जो अभी भी ब्रज में है, जो कि राजस्थान नहीं ले जाया गया, दूसरे कोई स्थान में नहीं ले जाया गया, और वो है दाऊजी। हम आज गोकुल गए थे, ब्रह्मांड घाट गए थे, तो राव जी, ये बलराम जी का मंदिर है, जो कि गोकुल के पास में ही है, थोड़ा आगे और है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, हम नहीं गए आज वहाँ पर। तो ये 6.5 फुट ऊंचा विग्रह है बलराम जी का। और बलराम जी की मूर्ति की स्थापना बद्रीनाथ ने की थी 4,900 साल पहले। लेकिन इस विग्रह के अलावा और जितने भी प्रमुख मंदिर थे, जो मूल मूर्तियां थी, विग्रह थी, वो सब ले गए पुजारियों राजस्थान में, और यहाँ पे केवल प्रतिभू मूर्तियां रह गए। प्रतिभू मतलब जो मूल मूर्ति के स्थान में जो नई मूर्तियां रहती हैं, उनको प्रतिभू मूर्ति कहते हैं, और इनको मूल मूर्तियों से अभिन्न माना जाता है। तो मूल मूर्तियां सब जयपुर में, कोई करौली में, कोई नाथद्वारा में, इधर उधर, तो ब्रज के सारे मूर्तियां अलग अलग स्थान में चले गए। तो यहाँ राधा मदन मोहन का इतिहास भी बड़ा सुनने लायक है। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद अद्वैत आचार्य यहाँ पर वृंदावन में आए थे, और अद्वैत भट्ट के स्थान में उन्होंने तपस्या की थी। अब जब हम यहाँ से जाएंगे नीचे, तो हमें अद्वैत वट रास्ते नहीं मिलेगा, और वहाँ एक वट वृक्ष है, जहाँ जिस वृक्ष के नीचे अद्वैत आचार्य तपस्या करते थे, अपना भजन करते थे, 500 वर्ष पूर्व की बात है। और उस समय उनको एक विग्रह प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण का, और उस विग्रह का नाम था मदन गोपाल। राधा रानी नहीं थी उस समय, केवल कृष्ण मिले उनको मदन गोपाल। तो उपासना थी अद्वैत आचार्य नमस्कार मदन गोपाल की, परंतु जब वापस बंगाल जाने का समय आया तो अद्वैत आचार्य ने मथुरा के एक ब्राह्मण जिनका नाम था चौबे, उनके हवाले ये मूर्ति कर दी और कहा कि आप इनकी पूजा कीजिए, इनका देखभाल कीजिए। और फिर अद्वैत आचार्य चले गए। वहां चौबे ब्राह्मण के घर में मदन गोपाल रहे और मदन गोपाल ने और चौबे ने मदन गोपाल को अपने पुत्र समान व्यवहार करना शुरू किया। सनातन गोस्वामी उस समय यहाँ पर रहा करते थे इसी किला के ऊपर, और वो जगह जगह जाकर माधुकरी करते थे। माधुकरी मतलब जब एक बाबा या साधु अलग अलग घरों में जाते हैं और थोड़ा थोड़ा भिक्षा मांग कर लेते हैं, जैसे एक मधुमक्खी या एक भंवरा फूलों में जाता है, और ऐसा नहीं कि एक फूल से बहुत सारा अमृत लेता है, नहीं, हर एक फूल से थोड़ा 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 लेकर की पूंजी बना के लेकर ले जाता है। उसी प्रकार से माधुकरी का मतलब है कि जो संत होते हैं वो अलग अलग घरों में जाते हैं, कहीं से एक चपाती रोटी ले ली, कहीं से थोड़ा सा थोड़ी सी सब्जी ले ली, कहीं से कुछ और लिया। तो ऐसे माधुकरी करते करते सनातन गोस्वामी एक बार मथुरा में आए थे, तो मथुरा में वो चौबे के घर में आए और चौबे के घर में आकर उन्होंने देखा कि चौबे के जो लड़के थे बच्चे थे वो मदन गोपाल के साथ ऐसा खेल रहे हैं कि मानो वो भी उनके समान ही कोई बच्चे हैं। तो सनातन गोस्वामी हैरान हो गए ये सुनकर, ये देखकर। तो तुरंत उन्होंने चौबे को डांटा कि अरे आपको पता है ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, ये अर्चा विग्रह है, और आपके बच्चे तो इस मूर्ति के साथ ऐसा खेल रहे हैं मानो कि ये कोई खिलौना है या दूसरा उनका कोई मित्र है, ये ठीक नहीं है। अर्चा विग्रह के लिए कोई विधि विधानों की आवश्यकता है। और ऐसा कहकर वो चले गए। और उसी दिन रात को जब सनातन गोस्वामी यहाँ वृंदावन में सो रहे थे तो उनके सपने में मदन गोपाल आए, और मदन गोपाल ने कहा मुझे इतना आनंद आ रहा था पहले जबकि चौबे मेरा भक्त मुझे उसका पुत्र समझकर प्रेम करता था, अभी आपने सारे विधि विधान बीच में लाए अब सारा मजा के क्या हो गया, अब मुझे आनंद नहीं आ रहा है, अब चौबे सारे विधि विधानों से मेरी पूजा उपासना करता है और मुझे कोई रुचि नहीं आती इसमें। सनातन गोस्वामी को आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने कितना बड़ा अपराध किया। तो उससे ही सनातन गोस्वामी शीघ्र चौबे के घर में गए। उधर चौबे जी को भी रात में सपना आया, मदन गोपाल सपने में आए और चौबे से कहने लगे कि आपके पास इतने बच्चे हैं और मैं भी और एक बच्चा हूं, तो अभी आप मुझे सनातन गोस्वामी के हवाले कर दीजिए, मैं उनसे सेवा स्वीकार करना अब चाहता हूं। इधर सनातन गोस्वामी क्षमा मांगने के लिए वहां पर आए तो उनको और भी आश्चर्य हुआ जब चौबे ने उनसे कहा कि मैं आपको मदन गोपाल देना चाहता हूं, आप स्वीकार कीजिए और देखभाल कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। और सनातन गोस्वामी ने तो पहले इनकार कर दिया, कहा कि नहीं नहीं मैं तो एक बाबा जी हूँ, भिक्षुक हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मैं तो सूखी चपाती खिला सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पका सकता, न कोई दाल है न सब्जी है न कोई मिठाई है न कुछ है, बस रूखी सूखी रोटी है, बस ये मैं कैसे खिला सकता हूँ। जब सनातन गोस्वामी वापस आए फिर मदन गोपाल आया और कहा कि नहीं रोटी रूखी सूखी रोटी जो भी हो मैं खाऊंगा, तुम जो खाओगे मैं वही खाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी फिर से गए और मदन गोपाल को लेकर आए। मदन गोपाल का नाम फिर हुआ मदन मोहन, और यहाँ एक वृक्ष हुआ करता था इस किला के ऊपर, इस पर्वत के ऊपर, और उस वृक्ष के भीतर सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन विग्रह को रखा, क्योंकि और कोई स्थान नहीं था, उन्होंने कोई मकान तो बनाया था नहीं अपने लिए, कोई उनका भजन कुटुंब नहीं था, कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई महल नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं था उनके पास, वो केवल वृक्ष के नीचे सोया करते थे, वही उनका घर था। तो छह गोस्वामी, जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे, वो हर रात अलग अलग वृक्ष के नीचे सोया करते थे। तो उन्होंने एक जहां एक वृक्ष चुना था और कहीं ऊपर उस मूर्ति को रखा करते थे, फिर उठने के बाद फिर से मूर्ति को लेकर मूर्ति की सेवा करते थे, फिर अपने ग्रंथ लिखते थे। ऐसे थोड़ा समय बीत गया, मदन गोपाल बड़े संतुष्ट थे, मदन मोहन सनातन गोस्वामी की सेवा से। फिर एक दिन मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी से कहा, अरे सनातन, तुम रूखी सूखी चपाती मुझे देते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं खाऊंगा, लेकिन थोड़ा नमक तो दिया करो, कम से कम रोटी में कुछ नमक तो होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, आज आप नमक मांग रहे हो, कल और कुछ मीठा मांगोगे? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं बाबा जी हूँ, भिक्षुक हूँ, मैं कहाँ से ये सब चीजें लाऊंगा, मुझे यहाँ बैठ के ग्रंथ लिखने हैं, बहुत सेवा है मुझे, और मैं ये सेवा छोड़कर आपके लिए सब मीठा ये चाहिए, नमक चाहिए, ऐसा करके रहूंगा तो कैसे संभव मेरे लिए, तो आप ऐसे रोटी ही स्वीकार कीजिए। तो फिर मदन मोहन ने स्वीकार किया, ठीक है ठीक, हम स्वीकार करेंगे, जो आप देंगे हम स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी राग भाव में, राग भक्ति से मदन मोहन की सेवा करते रहे। हमें ये सावधान होना चाहिए कि हम सनातन गोस्वामी की नकल नहीं कर सकते। बलराम मंदिर में राधा गोकुलानंद मंदिर से कहेंगे, राधा गोकुलानंद से कहेंगे, आप भी अभी बिना नमक से रोटी खाइए, सब्जी नहीं खाइए, ऐसा नहीं चलेगा। हमें तो विधि विधानों का पालन बड़े शक्ति से करना चाहिए, भक्ति भाव से भी करना चाहिए। तो एक दिन हुआ ये कि एक बहुत ही धनी व्यापारी थे जिनका नाम था रामदास कपूर, वो मुल्तान के रहने वाले थे जो अब पाकिस्तान में है, और वो नदी के ऊपर सवार होकर, नदी में एक नौके के ऊपर सवार होकर आगरा जा रहे थे, जमुना जी से होकर आ रहे थे। काफी सामग्री उनके पास थी, वो बेचना चाहते थे, विशेष करके बहुत सारा नमक भी था उनके पास। तो जब वो जमुना से आ रहे थे और केशी घाट के पास ही पहुंचे, तो अचानक रेती में उनका नौका जो है वो अटक गया, या जितने भी नौके उनके थे, दो चार नौके जो भी थे, वो अटक गए वहां पर। और रामदास कपूर काफी परेशान हो गए कि क्या किया जाए। उस समय मदन मोहन एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके रामदास कपूर के सामने आए और कहने लगे कि यहीं पर पास में जो टीला है वहां पर एक बाबा जी रहते हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनके पास जाइए और आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। तो रामदास कपूर जल्दी ही यहां पर आए सनातन गोस्वामी के पास। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो कुछ स्वयं नहीं कर सकता, परंतु यह मदन मोहन है, उन्होंने विग्रह से इशारा किया, हालांकि वही विग्रह एक व्यक्ति रूप मनुष्य रूप धारण करके आए थे रामदास कपूर के पास, लेकिन सनातन गोस्वामी ने मूर्ति के पास उनको भेजा, कहा कि यहाँ मदन मोहन जी से आप प्रार्थना कीजिए, अवश्य मदन मोहन जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे और कोई समस्या का हल निकालेंगे। तो रामदास कपूर ने बड़े श्रद्धा से मदन मोहन के पास ये विनती रखी, और चमत्कार हुआ ये कि थोड़े ही समय बाद मुसलधार वर्षा होने लगी, और उस वर्षा की वजह से जमुना का पानी ऊपर आने लगा, बाढ़ हो गया, और ज्यादा पानी होने की वजह से जो नौके थे उस रेती से छूट गए और पानी में आगे निकल गए। तो रामदास कपूर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो चमत्कार ही हो गया। तो सीधे वो आगरा गए, आगरा में उन्होंने सारा जो उनकी जो भी सामग्री थी वो सब बेच डाला और बहुत ही अच्छा मुनाफा उनको मिला, अच्छा प्रॉफिट मिल गया उनको। और जितना भी पैसा उन्होंने कमाया था, फिर वो जो वापस आ रहे थे तो वृंदावन रुके और सनातन गोस्वामी के पास आए और कहने लगे कि जो भी पैसा मैंने कमाया है वो आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए मैं ये सारे पैसे आपको देना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो भिक्षुक हूँ, मैं पैसे लेकर क्या करूँगा, लेकिन हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, आप मदन मोहन के लिए एक सुंदर मंदिर बना सकते हैं। फिर रामदास कपूर ने ये सुंदर मंदिर बनवाया और बहुत कुछ था यहाँ पे उस समय, लेकिन फिर वो अब रहा नहीं है, मुगलों के समय तो काफी कुछ टूट गया है। फिर रामदास कपूर ने ये सुंदर मंदिर बनाया और उस दिन से राधा, उस दिन से मदन मोहन के लिए एक सुंदर निवास स्थान मिल गया। ये सबसे पहला मंदिर ये था वृंदावन में। उस समय राधारानी नहीं थी, राधारानी कई साल बाद में आई, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के आने के बाद भी। फिर जब औरंगजेब के समय उनके सैनिक आए थे, सिपाही आए थे यहाँ पर, उस समय यहाँ की मदन मोहन की मूर्ति है वो जयपुर पुजारी ले गए, और जब जयपुर के राजा की जो कन्या की पुत्री थी उसका विवाह हुआ करौली के राजकुमार से, तो राजकुमारी ने कहा कि मैं मदन मोहन जी को भी साथ में ले जाना चाहती हूँ। तो प्रेम पिता ने कहा ठीक है, तो फिर राधा मदन मोहन जी जयपुर से करौली गए और आज भी वहाँ राधा मदन मोहन का सुंदर मंदिर है करौली में, जो कि जयपुर से थोड़े घंटे के रास्ते पर है। आप में से कोई गए हैं करौली? राधा मदन मोहन का दर्शन किया है आपने? कई आप में से गए हैं? तो जो अगर आप कोई, आप में से कोई जयपुर जाएंगे तो अवश्य करौली जाइएगा और वहाँ मूल विग्रह राधा मदन मोहन इनका दर्शन आप कीजिएगा। तो इसके बाद एक के बाद एक धीरे धीरे से अन्य गोस्वामियों के मंदिर की स्थापना होने लगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में अपने मंगलाचरण में विशेष करके तीन विग्रहों का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले हैं मदन मोहन, दूसरे हैं गोविंद देव और तीसरे हैं गोपीनाथ या गोपी जनवल्लभ। और अपने मंगलाचरण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन तीनों विग्रहों की स्तुति करते हैं, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के समय केवल ये तीन मंदिर थे, यहाँ पर प्रमुख मंदिर केवल तीन थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी उसी समय आए थे और इसीलिए उस समय ज्यादा मंदिर थे नहीं यहाँ पर, और इन्होंने इन तीनों मंदिरों की स्तुति की। जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मते गति मत सर्वस्व पदाम भोजौ राधा मदन मोहनौ। उन्होंने स्तुति की है मदन मोहन की, वो कहते हैं जयताम जयताम राधा मदन मोहनौ, जय जय जयकार हो राधा मदन मोहन का, जो कि जिनके चरण कमल मेरे सर्वस्व हैं। मत सर्वस्व पदाम भोजौ, अम्भोज मतलब कमल, पद मतलब चरण, तो जय जयकार उन मदन मोहन का जिनके चरण कमल मेरे सर्वस्व हैं और वो मेरे गति हैं, मेरे आश्रय हैं, मेरे सब कुछ है वो, और मैं जो कि पंगो पंगु मतलब जो लंगड़ा हूँ, मंद मंद मति और मेरी मति भी मंद है, मैं मंद बुद्धि वाला हूँ, लेकिन फिर भी ये राधा मदन मोहन, केवल मदन मोहन क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के समय राधा रानी नहीं थी, ये मदन मोहन मेरे आश्रय हैं, मेरे सब कुछ हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ये मदन मोहन जो है ये हमारे संबंध मूर्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि सारे वेदों का ज्ञान तीन शब्दों से जाना जा सकता है, एक है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। संबंध मतलब हमें जानना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत यहाँ से होती है, ये प्राथमिक ज्ञान है और आगे चल के जब संबंध ज्ञान स्थित साबित हो जाता है तब एक भक्त उस ज्ञान के अनुसार भगवान कृष्ण की सेवा करना आरंभ करता है और भगवान उसकी सेवा स्वीकार करते हैं और बड़े तीव्रता से बड़े प्रेम से वो सेवा करना शुरू करता है, भजन क्रिया स्वीकार करता है, उसको अभिधेय कहते हैं। और ऐसे भजन क्रिया के पद को स्वीकार करते करते जब वो बड़े श्रद्धा से भक्ति भाव से हृदय से भगवान की सेवा करते रहता है, अंततः भगवान की कृपा से उसे इसका मधुर फल प्राप्त होता है जो है कृष्ण प्रेम। इसको प्रयोजन कहते हैं, जो उद्देश्य है हमारी सेवा का। तो मदन मोहन जो है ये संबंध मूर्ति है। जब हम मदन मोहन की सेवा करते हैं तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, इसलिए हमको संबंध मूर्ति कहते हैं। इस दुनिया में हम संसार के वस्तुओं से आसक्त हैं, लेकिन राधा मदन मोहन की सेवा करने से हम इन दुनिया के वस्तुओं से व्यक्तियों से निरासक्त होकर केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों में आसक्त हो सकते हैं। ये शक्ति ये बुद्धि हमें मदन मोहन देते हैं। और ऐसे भी बताया जाता है, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो दीक्षा गुरु होते हैं वो मदन मोहन के मूर्तिमान स्वरूप हैं या व्यक्तिगत एक रूप है, व्यक्तिगत प्रकट रूप है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु कृष्ण है, लेकिन गुरु प्रतिनिधि रूप में कृष्ण है। विशेष करके दीक्षा गुरु प्रकट रूप है मदन मोहन का। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी मदन मोहन का गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। आगे जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वर्णन करना चाहते हैं, वो कहते हैं गोविंद देव की स्तुति करना वो चाहते हैं। गोविंद देव मंदिर के बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे, जब शायद आने वाले दो तीन दिनों में अगर हमें समय मिले तो। उस मंदिर की स्थापना श्री रूप गोस्वामी ने की थी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं दिव्या वृंदारण्य कल्प प्रमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमत राधा श्रील गोविंद देवो प्रेषाली से मानो स्मरामी। वो कहते हैं कि इस प्रकाशमान वृंदावन में एक रत्नों का बनाया हुआ सुंदर मंदिर है और इसके अंदर एक रत्नों से सुशोभित एक आसन है, सिंहासन है, जिसके ऊपर विराजे हैं श्रीमत राधा श्रील गोविंद देवो। श्री श्री राधा गोविंद विराजे हैं और उनके साथ कौन है, प्रेष्ठ आली भी, उनके जो पार्षद है वो सब हैं। और मैं उन राधा गोविंद का स्मरण करता हूँ, उनका मैं चरणों में नमन करता हूँ। तो ऐसे राधा गोविंद की स्तुति कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने मंगलाचरण में करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि राधा गोविंद ये अभिधेय मूर्ति है। जब राधा गोविंद की हम सेवा करते हैं तो हमारी जो हमारा जो संबंध है प्रेम का भगवान कृष्ण के साथ, वो और भी मजबूत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। और अंततः जब ये परिपक्व हो जाता है तो हम गोपीनाथ या गोपी जन वल्लभ को समझ सकते हैं। गोपी जन वल्लभ मतलब जो गोपियों के स्वामी हैं, जो गोपियों के साथ लीला करते हैं। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्री पुनः। तो ये तीसरा श्लोक है मंगलाचरण में। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोपीनाथ या गोपीजन वल्लभ ये प्रयोजन मूर्ति हैं, ये हमारे भक्ति की परिपूर्णता है। जब हम ये समझ पाएंगे कि श्री कृष्ण और राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ क्या लीला करते हैं, ये सबसे ऊंचा स्तर है। जब हम संबंध और अभिधेयक स्थानों से गुजर चुके हैं, तो इसलिए जब शर गोस्वामी यहाँ पर आए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के तीन संबंध अभिधेय प्रयोजन के कदमों को जानकर पहले इन तीन मंदिरों की स्थापना की, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ या गोपी जन वल्लभ। तो देखिए इन मूर्तियों के पीछे कितना दर्शन है, कितना फिलोसफी है। तो हमें लीलाएं भी सुननी चाहिए, साथ साथ ये दर्शन है इसको भी जानने का प्रयास करना चाहिए। और इस सब के पीछे शर गोस्वामियों का हाथ है, इन्होंने ही सब कुछ यहाँ अच्छी तरह से स्थापित किया है। आगे चलते हम राधा गोपीनाथ मंदिर में और राधा गोविंद मंदिर में जाएंगे, और आज हम यहाँ चल के नीचे जाएंगे अद्वैत वट में। जैसे हमने आपको बताया इतिहास कि अद्वैत आचार्य वहाँ पर भजन किया करते थे और वहाँ उनको मदन गोपाल मूर्ति प्राप्त हुई, और वहाँ से फिर वो चौबे के पास आए, चौबे से यहाँ पर मदन मोहन मंदिर में। आगे चल के अगर अवसर मिले तो हम इंडिकल अभी जाएंगे, इंडिकल के बारे में हम सुबह भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से इतने आसक्त हैं कि जब श्रीमती राधा रानी चली जाती हैं तो श्री कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और कोटि कोटि गोपियां भी हों फिर भी कृष्ण संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब राधा रानी अकेले भी रहती हैं तो श्री कृष्ण पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। तो एक बार जब श्रीमती राधा रानी रासलीला छोड़कर चली गई तो कृष्ण भगवान बड़े दुखी हुए। दुख तो क्या, ये तो आध्यात्मिक स्तर में भक्ति के स्तर में सब दिव्य आनंद ही है, आनंद के अलग अलग स्वरूप है ये। तो वो शोक करते हुए इस इमली वृक्ष के तट पे आए, वृक्ष के नीचे आए और वहाँ शोक करते बैठे, राधा रानी का नाम उच्चारण करते बैठे, और ऐसे राधा रानी का नाम लेते लेते राधा रानी का भाव उन्होंने स्वीकार किया। और जो राधा रानी अनुभव करती है श्री कृष्ण के प्रति, उसी भाव को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और उनके शरीर की कांति इस सांवले रंग से स्वर्ण रंग में बदल गया। जब श्रीमती राधा रानी वहाँ पर गोपियों के साथ आई तो उन्होंने देखा कि अद्भुत दृश्य है, ये हमारे श्याम श्याम नहीं रहे, ये गौर हो गए। तो फिर श्री कृष्ण ने इसका रहस्य बताया और फिर श्रीमती राधा रानी से कहा कि 4,500 वर्ष बाद में मैं फिर से यहाँ आऊंगा, लेकिन उस समय तुम्हारा भाव और तुम्हारी कांति स्वीकार करके आऊंगा और मेरा नाम उस समय रहेगा गौरांगा। और फिर 500 वर्ष पूर्व, आज से 500 वर्ष पूर्व, वही चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन में आए, वो भी इंद्र कला में आए, वो भी उसी वृक्ष के नीचे बैठकर कृष्ण के विरह में वो अपनी भावना व्यक्त करते थे, क्योंकि उनका भाव श्रीमती राधा रानी का था। इसलिए कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका जो स्वर्ण रंग है वो काला बन गया। तो ये लीला जो है इंद्र कला में हुई। तो अद्वैत वट, श्रृंगार वट शायद समय नहीं मिलेगा, अद्वैत वट और आगे देखते हैं जैसे समय हो, ठीक है। तो कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? अच्छा, तो राधा श्याम सुंदर मंदिर में भी हमें जाना है जो कि यहाँ से केवल 10 मिनट है, तो थोड़ा 2 मिनट हम राधा श्याम सुंदर के बारे में कहें। हम पहले कह चुके हैं कि राधा श्याम सुंदर की स्थापना इन्होंने की, याद है हमने कहा ना पहले 7 मंदिरों के बारे में, श्यामानंद पंडित गोस्वामी, जबकि वो दूसरी बार यहाँ पर आए उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और ये कथा तो काफी लंबी है कि श्यामानंद पंडित को कैसे श्रीमती राधारानी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। शायद आज वो पूरी कथा को कहने के लिए समय हमारे पास नहीं होगा, लेकिन इतना ही हम कहें कि जो श्रीमती राधारानी ने स्वयं उनको एक श्याम सुंदर की मूर्ति देखी है वो भी आज यहाँ पर है उस मंदिर में। और श्रीमती राधारानी ने श्यामानंद पंडित के कपाल के ऊपर एक नूपुर की निशानी रखी जिससे एक नया तरह का तिलक बन गया और आज भी श्यामानंद पंडित के जो अनुयायी हैं वो उसी तिलक को स्वीकार करते हैं। तो हुआ ये कि श्यामानंद पंडित की सेवा थी कि सेवा कुंज की सफाई करे, मार्जन करे। सेवा कुंज तो बहुत पवित्र स्थान है जहाँ श्रीमती राधारानी रानी गोपियां श्री कृष्ण से मिलते हैं और एक बार ऐसे उस स्थान का मार्जन करते करते उनको एक नूपुर मिल गया। तो श्यामानंद पंडित ने सोचा कि ये नूपुर तो किसी साधारण महिला का नहीं है, ये तो श्रीमती राधारानी का ही होगा। थोड़े ही समय बाद में एक बहुत ही सुंदर नव युवती वहां पर आई और कहने लगी श्यामानंद पंडित से, ये नूपुर मुझे दे दीजिए, मेरी बहन का है। तो श्यामानंद पंडित ने कहा कि मैं आपके बहन को देखना चाहता हूँ, कौन है वो बहन, आने दीजिए। तो इसके बाद अलग अलग वर्णन है। एक वर्णन में ऐसा कहा जाता है कि ये नव युवती गई और वापस लेकर आई अपनी बहन को। ये नव युवती थी ललिता देवी और उनकी बहन थी श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी ने फिर कहा कि बहुत अच्छा और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से, बहुत अच्छी तरह से सेवा कुंज की सेवा करते हो। तो जब नूपुर वापस श्यामानंद ने लिया तो राधा रानी ने नूपुर को लिया और श्यामानंद के कपाल से स्पर्श किया और उस स्पर्श की वजह से एक निशानी बन गई जो अलग तरह का तिलक बन गया उसमें। और राधा रानी ने श्यामानंद पंडित को नाम दिया श्यामानंद। पहले उनका नाम हुआ करता था दुखी कृष्णदास। उन्होंने दीक्षा ली थी बंगाल के एक महान वैष्णव से जिनका नाम था हृदय चैतन्य दास, जो कि गौरीदास पंडित के शिष्य थे और गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय पार्षद थे। वो अंबिका कालना में रहते थे। आपने सुनी होगी वो कथा जब गौर निताय की मूर्तियां संकीर्तन करने के लिए भक्तों के बीच में आए और चैतन्य महाप्रभु फिर नित्यानंद प्रभु के साथ सिंहासन पर चढ़े। तो वो लीला अंबिका कालना में हुई थी और वो गौरीदास पंडित के विग्रह थे। गौरीदास पंडित के बाद आए हृदय चैतन्य के शिष्य थे दुखी कृष्णदास। लेकिन इस घटना के बाद श्रीमती राधारानी ने स्वयं एक नया नाम दिया जो श्यामा या राधारानी को आनंद देता है, वह श्यामानंद। और फिर उन्होंने जाके जीव गोस्वामी से कहा कि जीव गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु थे, हृदय चैतन्य उनके दीक्षा गुरु थे, लेकिन हृदय चैतन्य ने ही दुखी कृष्णदास को जीव गोस्वामी के पास भेजा था वृंदावन में प्रशिक्षण के लिए। तो श्यामानंद ने आकर जीव गोस्वामी से सारी बात कही। जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। हालांकि अन्य वैष्णव में कई ऐसे वैष्णव थे उनके बीच में ये प्रश्न उठा कि ये नया तिलक कहाँ से आया, ये नया नाम कहाँ से आया। फिर जीव गोस्वामी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। इसलिए इस घटना के बाद उनका नाम हुआ श्यामानंद और वहाँ सुंदर मूर्तियां हैं। अगर वहाँ हम जब जाएंगे तो वहाँ अवश्य आप दर्शन कीजिएगा उस मूल मूर्ति का जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी ने दिया था। और श्यामानंद पंडित के बारे में बहुत कुछ कहना है लेकिन और कभी कहते हैं, लेकिन महान आचार्यों के बारे में तो बहुत कुछ ऐसी कथाएं हैं। तो ये है राधा श्याम सुंदर मंदिर। ठीक है, याद रहेगा आपको हम कौन से स्थानों में जाएंगे, इंग्लिश कला, अद्वैत वट और राधा श्याम सुंदर मंदिर। अब हम कहां बैठे हैं, राधा मदन मोहन। तो जान लीजिए कि ये हमारा
ये हमारी संस्कृति, हमारा हेरिटेज है आध्यात्मिक दृष्टि से। हमारा सब कुछ यहाँ वृंदावन में है, तो वृंदावन के सारे मंदिरों का इतिहास, इनका महत्व, इनका महात्म्य जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, अभी हम शर गोस्वामी का गुणगान करना चाहते हैं, क्योंकि शर गोस्वामी की वजह से ही ये वृंदावन हमारे सामने प्रकट हुआ है। नहीं तो हम नहीं जान सकते थे, दुनिया नहीं जान सकती थी कि वृंदावन क्या है। ये प्रबंधन नहीं होते, ये स्थान प्रकट नहीं होते, इसलिए हम श्री शर गोस्वामी अष्टक जल्दी से गाएंगे। आपके पास अगर भजन पुस्तक है तो कृपया बोलिए शर गोस्वामी अष्टक के लिए। एक प्रश्न ये है कि ऐसा एक मत है इस्कॉन भक्तों में कि कालिया अभी भी जीवित है इसी देश में। हाँ, प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि रमणक द्वीप वो फिजी है, परंतु अभी तक कालिया जीवित है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन रमणक द्वीप वहाँ है वो प्रभुपाद ने अवश्य कहा था। और अगर हाँ तो क्या ये कारण था कि प्रभुपाद जी ने फिजी में कालिया मर्दन मंदिर फिजी में स्थापित किया था? हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी ने वहाँ विग्रह का नाम दिया कालिया मर्दन, जो कि कृष्ण का नाम है। ठीक है, तो आपके पास पुस्तक है ना शर गोस्वामी अष्टक, आप सब जानते हैं। ये श्रीला श्रीनिवास आचार्य द्वारा विरचित है, बहुत ही सुंदर है। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो, प्रेमामृतांबोल दी। प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, वंदे रूप सनातन रघु युग श्री जीव गोपाल को, दाना शास्त्र विचारण कनिपुणो सद्धर्म संस्थापको, मानो शरण्य करो, राधा कृष्ण पदारविंद भजन मंदे नमत वंदे
रूप सनातन प्रभु युगो जीव गोपाल को
Oh, Oh.